अमेरिका ने ताइवान के आसपास चीन के बढ़ते सैन्य अभ्यास को गैर जिम्मेदाराना और उकसाने वाला बताया है। बड़े पैमाने पर चीन द्वारा सैन्य अभ्यास अपने चौथे दिन में प्रवेश कर गया है। तेपेई ने बीजिंग पर एक तरफा हमले के लिए पूर्व अभ्यास करने का आरोप लगाया है और ऑस्ट्रेलिया को विवाद में अब खींचा जा रहा है। कैनबरा में चीन के दूतावास ने ताइवान के पास बीजिंग द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों के उपयोग की आलोचना करने के लिए फेडरल सरकार को फटकार लगाई। ताइवान के पास समुद्र में चीन अब तक का सबसे बड़ा लाइव फायर अभ्यास कर रहा है। ये अभ्यास चीन ने यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवानी यात्रा के मद्देनजर शुरू किया और इसके थमने के कोई संकेत नहीं दिखाए। पूरे हफ्ते ऑस्ट्रेलियाई सरकार सावधान रही कि स्पीकर की यात्रा पर टिप्पणी ना करें, लेकिन शुक्रवार को विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने चीन की प्रतिक्रिया के बारे में कुछ टिप्पणी की। वे अपने अमेरिकी और जापानी समकक्षों के साथ सैन्य गतिविधियों को अनियमित और अस्थिर करार देने में शामिल हो गईं। अब ऑस्ट्रेलिया में चीन के दूतावास ने उनकी प्रतिक्रिया की निंदा करते हुए एक लिखित बयान में कहा है,
It is absolutely unacceptable for the finger pointing on China's justified actions to safeguard state sovereignty. Australia should not take sides and blindly make unfair judgments. We also hope that the Australian side does not create new troubles and disturbances in China-Australia relations.
लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार अपने रुख पर कायम है। ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवन ने चैनल 9 से कहा है कि ऑस्ट्रेलिया अपने विचार व्यक्त करने का हकदार है।
This action by China is disproportionate and it's destabilizing. It's over the top. And under the Albanese government, we're going to say what we believe, we're going to call it as we see it, and we're going to act in Australia's national interests and in accordance with our values. We'll do so calmly, carefully, but we will say what we believe should happen in the region, and we will make statements even if other nations don't agree with those. We will make those statements respectfully but very strongly.
और वहीं द नेशनल्स के डेविड लिटिल प्राउड ने चैनल 9 को बताया कि सरकार सही तरीका अपना रही है।
They're carrying on from exactly what we were doing in government. I think Penny Wong is doing a good job in trying to de-escalate it, to bring some calm, to try and get some common sense on this. So I think it's important that we don't overreact, but it's proportionate, and I think Penny Wong's done that with our partners, particularly the Japanese.
चार्ल्स स्टर्ट यूनिवर्सिटी के चीन विशेषज्ञ क्लाइव हैमिल्टन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को आगे बढ़ने के लिए तैयार रहने की जरूरत है।
I think the possibility of some kind of military action by China against Taiwan is definitely one that should be factored into strategic calculations. Beijing is unpredictable. We know that Xi Jinping is determined to take back take control of to invade. And annex Taiwan. So Australia must be prepared for that possibility while doing what we can to limit the possibility of it happening.
इसी के चलते ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पिछले सप्ताह रक्षा बल की एक व्यापक समीक्षा कमीशन की है, जिसमें बढ़ते वैश्विक तनाव को एक अंश रखा है। इस समीक्षा के परिणाम अगले मार्च तक आने की उम्मीद है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अब समय रक्षा बलों को मजबूत करने का है। गठबंधन के रक्षा प्रवक्ता एंड्रयू हेस्टी ने एबीसी को कहा कि सरकार को अपना खुद का मिसाइल कार्यक्रम विकसित करना चाहिए और परमाणु पनडुब्बियों की डिलीवरी में तेजी लानी चाहिए।
If there was a conflict around Taiwan, whether we're involved directly or indirectly on the periphery, we would certainly be in the gun, and that's why we need to build our deterrent strength. And that's why we need to exercise exceptional political leadership, diplomatic leadership, and these are the things that we need to think about as this review goes forward.
White House Speaker Nancy Pelosi ki Taiwan ki vivadspad yatra ke baad, Chin ne America ke saath संचार के प्रमुख लाइनों को फ्रीज कर दिया है और अब सीमा पार अपराध और ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर भी चीन अमेरिका के साथ अपने संबंध को निलंबित कर रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरन जिनपे का कहना है कि चीन से इस तरह के तनाव का कोई कारण नहीं है और स्पीकर को ताइवान जाने का पूरा अधिकार है।
It is fundamentally irresponsible what they are doing. And we'll continue our efforts to keep open lines of communication with Beijing while defending our interests and values in the region. This is what the world expects, the United States and China, and we encourage Beijing to keep this commitment as well when it comes to the dialogue, the climate dialogue that was canceled.
United Nations के महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने मजबूत संचार की आवश्यकता के बारे में यह टिप्पणी की.
We've obviously seen those reports. I think for the Secretary General, for him, there is no way to solve the most pressing problems of all the world without an effective dialogue and cooperation between the two countries.
आपको बता दें कि अमेरिकी हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से चीन ताइवान के बीच विवाद बढ़ा है. चीन ने नैंसी पेलोसी के दौरे को लेकर अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी. SBS न्यूज की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है नताशा कॉल ने SBS हिंदी के लिए.